وهو الذي جعل لكم النجوم, اور وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ستارے. اب اتنی بڑے بڑے کرائے عرض, اتنی بڑے بڑے پلینٹ, سٹارز, سن اور مونز کی بات ہو رہی ہے جن پہ انسان کو پتا ہے کہ میں بے بس ہوں, یہاں پہ کوئی بس نہیں چلتا اس کا. کوئی انسان اٹھ کے نہیں کہہ سکتا جی میں ہوں جو سورج کو نکال سکتا ہوں, جی میں ہوں. یہاں پہ انسان کو اپنی بے بسی نظر آ جاتی ہے, پھر اس کو لازمی ماننا ہے کسی اور ہستی کو جو یہ سب چلا رہی ہے. کیونکہ انسان تو سوچتا ہے نا میں ہوں سب سے بڑی چیز, میں کرتا ہوں. تو اب وہ میں کہاں گئی؟ اللہ ہے جس نے بنائے ستارے. ستاروں تک کون سا انسان کہہ سکتا ہے, تو بیچارہ پہنچ نہیں سکا انسان. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, یہ سورج بھی ایک سٹار ہے لیکن اس سے بھی بڑے بڑے سٹارز ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے, یہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے سامنے, اتنے بڑے بڑے ستارے. تو اس لیے لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, اللہ نے دیکھو کتنے بڑے ستارے بنا لیے اس لیے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. اب بتا سمندر میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ٹریکس تو بنے نہیں ہوتے, وہ ستاروں سے ڈائریکشنز دیکھتے ہیں. نیویگیشن کا سسٹم, جی پی ایس وہاں پہ تو نہیں ہے, ایسا تھا نا پہ ہمیشہ سے یہ جی پی ایس تو نہیں ہے, اور نہ کسی پاس ہو تو کیسے دیکھے. وہ ٹائم بھی ستاروں سے متعین کرتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں پہ پہنچ گیا اس کا مطلب اب دن نکلنے والا, یا یہ ستارہ اس طرف ہے تو اس کا مطلب میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو وہ ان کو وہ اس طرح سے سمندروں میں راستے تلاش کرتے تھے, اسی طرح ڈیزرٹس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ڈائریکشن کیسے دیکھے, نارتھ ساؤتھ کا کیسے پتا چلے, وہ ستاروں سے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقصد ہے نا وہ بیان فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے تم ہدایت پاؤ, تم راستہ پاؤ. تو کیا راستہ پھر ستاروں سے ہی پانا ہے, نجوم سے پانا ہے, یا علم نجوم سے بھی پانا ہے؟ علم نجوم سے نہیں پانا, اس لیے کہ ستاروں کے تین صرف مقاصد قرآن پاک میں آئے ہیں, تین. ایک یہ یہاں پہ, نمبر ٹو سورہ ملک میں آیا شیاطین کو مارنے کے لیے. تو شیطانوں کو مارنا وہ بھی ان کے ذریعے, اور تیسرا مقصد بھی سورہ ملک میں ہے, آسمان کی زینت. یہ تین مقاصد ہیں. ان کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اگر کسی نے ستاروں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس نے پھر اللہ کی آیات, اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے خلاف کیا. کہ اس کو اللہ نے مصابی بنایا, اس شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا, راستہ دکھانے کا ذریعہ بنایا. بس یہ تین فائدے ہیں جو ان کے علاوہ ستاروں سے چوتھا فائدہ لے گا تو وہ باطل ہے, یہ مفسرین کا قول ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی, اور آپ اس کے اس قول علماء کی اس بات کی تصدیق میں بھی دیکھیں نا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے ستاروں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا. اور جادو آپ کو پتا ہے حرام ہے, تو علم نجوم بھی جادو کا ایک حصہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ کا سٹار کیا ہے جی, تو یہ کیا ہے؟ ہاں جی یہ کسی نے کہا جی, مجھے اتنی عجیب یہ ایک بات لگی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہدایت دے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو سٹار ہے نا وہ لیو ہے, تو لہٰذا لیو ہے تو اس لیے اس کے اوپر کووڈ کا اتنا اثر نہیں ہوگا. یہ کیا, یعنی یہ اچھے بھلے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, کہ اتنا ہمارے دماغوں کے اوپر دیکھو یہ علم نجوم کیسے چھایا ہوا. اچھے بھلے سینسیبل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ستارے آج ہمارے کہہ رہے ہیں, اور اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپنے سٹارز کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, میرا اس سال میرا ستارہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہوگا. تو یہ سب باتیں باطل ہیں, یہ جادو کا ایک حصہ ہے اور جادو حرام ہے. پھر بھی اگر انسان ان سے اس طرح کی بات لیتا ہے تو یہ شرک ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نجوم کا بھی کوئی اثر ہے انسان کے اوپر؟ اللہ ہی ہے جو فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے. ہم اس سورت میں بڑی اچھی طرح یہ پڑھ چکے ہیں, یمسسک اللہ بالضر فلا کاشف لہ الا ہو. अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो दूर नहीं कर सकता सिवाय उसके। ये सितारे कहाँ से आ गए कि ये भी नुकसान देने लगे? इनकी चालें भी आपको फायदा या नुकसान दे सकती हैं, या आपकी जिंदगी पे असर अंदाज हो सकती है। तो इन चीजों को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी बातों को ना सुनना चाहिए ना मानना चाहिए, कोई कहे भी तो उसको मना कर देना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इनको इस मकसद के लिए बनाया, वो कहते हैं राह पाने के लिए तो बनाया खुश्की और समंदर की अंधेरों में, तो हम रास्ता ही तो पा रहे हैं, हम तो सितारों की चालें देख के रास्ता पा रहे हैं, कैसे अल्लाह की आयात को तरोड़ते मड़ोड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या इसी तरह की तफसीर की है? तफसीर देखनी है तो हदीस से देखें, इसीलिए खुद ही नहीं तफसीरें कर लेनी चाहिए कि नहीं जी देखिए कुरान के अंदर है ना ली ताकत हु भी हा, ताकि तुम राह पाओ, तो हमें गाइडेंस मिल रही है स्टार से, तो हम तो अपने सितारे देखेंगे, उनसे रहनुमाई हम लेंगे। तो देखना चाहिए ना कि फिर क्या ऐसी चीज की यहां इस आयत की यही तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि तुम इल्मे नुजूम से लिया करो। क्या उस वक्त इल्मे नुजूम नहीं था? बिल्कुल थे, काहिन भी होते थे, इल्मे नुजूम भी थे, लेकिन जो जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है उसकी तरफ हम क्यों जाते हैं? पद फसल नल आया, तहकीक तफसील से खोल खोल के बयान कर दी हमने आयतें, किसके लिए? ले कौमी या लमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, जो इल्म वाले हैं ना, जो जिनको समझ बूझ है, जो इल्म रखते हैं वो इससे फायदा उठाते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, अपने आप को तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे, लेकिन वो जाहिल हैं, इसलिए वो इनसे फायदा नहीं उठाते, वो इन चीजों के ऊपर सोचते ही नहीं है। तो इल्म वो है जो इंसान को अल्लाह ताला की पहचान कराए। ये इल्म क्या है कि आपने साइंस भी पढ़ ली, मैथ भी पढ़ लिया, फिजिक्स भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, आपको वो ही नहीं पता चला जिसने ये सारे कवानीन बनाए। आप फिजिक्स के कवानीन पढ़े हैं, उनको कवानीन को बनाने वाला कौन है? आप हिसाब किताब मैथ पढ़ रहे हैं, उस मैथ को इस इल्म को देने वाला कौन है? आप और जुबानों का इल्म दे रहे ले रहे हैं, इन जुबानों को क्रिएट करने वाला कौन है? आपको उसका पता ही नहीं, कहीं और ही लगे हुए। तो ये क्या इल्म है? इसके बाद लोग कहते हैं ना फलां के पास इतनी बड़ी डिग्री है, क्या भला उसको समझ नहीं आई? वो हिंदू हैं, इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या उनको समझ नहीं आई? तो वो इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म वो है जो खालिक की पहचान करवाए। इसको खालिक का ही नहीं पता, मेकर का ही नहीं पता, हर चीज पे पहले लिखा होता है मेड इन दिस दिस, मेड इन चाइना, मेड इन फलां, जिसने ये ही नहीं देखा कि ये मेड इन कहाँ का है, वो क्या पढ़ रहा है और क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है, जिस जिस चीज पे तहकीक हो रही है उसको बनाने वाला कौन है? अब वो जो मसलन डिजीजेस के ऊपर, इंफेक्शन डिजीज के ऊपर जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आती कि ये डिजीज कहां से आई, इसका खालिक कौन है, कहां से एकदम से नमूदार हो गई। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, एक आदम से। देखो आज कितनी दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सारे एक जान से पैदा हुए, एक इंसान से पैदा हुए। और फिर फमुस्तकर व मुस्तौदा, वो ही वो जात है जिसने तुम्हारा मुस्तकर भी मुकर्रर कर दिया कि ये होगा इसका मुस्तकर और ये होगा इसका मुस्तौदा। क्या होते मुस्तकर और मुस्तौदा? देखिए मुस्तकर करार की जगह, जहां पे इंसान लॉन्ग टर्म स्टे करे, और मुस्तौदा वो जगह जो टेम्परेरी होती है इंसान के लिए, शॉर्ट टर्म जिसको कहें स्टे जहां पे होता है वो मुस्तौदा है, और मुस्तकर लॉन्ग टर्म जहां पे रहना। अब इसके बारे में उलमा ने बहुत सारी बातें कही कि मुस्तकर क्या है और मुस्तौदा क्या है। बाज ने कहा कि रहमे मादर मुस्तकर है और मुस्तौदा बाप की सुलभ है, बाज ने कहा कि नहीं माँ के पेट की जगह मुस्तौदा है और मुस्तकर इंसान का ये दुनिया की जिंदगी है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेगा वो शॉर्ट टर्म है। कुछ ने कहा कि ये दुनिया मुस्तौदा है और यहाँ पे कुछ देर ठहरना है, और फिर उसके बाद उसका मुस्तकर जो है वो आखरत है, जिसमें सारी कब्र भी और सारी जिंदगी आ गई, बिल्कुल आगे हशर भी है। किसी ने कहा कि कब्र मुस्तौदा है और उसके बाद आखरत जो है वो मुस्तकर है। तो ये डिफरेंट तफासीर है, डिफरेंट तफासीर इसके अंदर आई, यानी अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर किया हुआ है कि कहाँ, अगर एक एक को भी लेके देखें सारी बातें ठीक है इसके अंदर, कोई भी बात तो नहीं है, क्योंकि हर जगह उसकी पहले मुस्तकर होती है, सॉरी मुस्तदा होती है, फिर आगे उसने किसी अपनी मुस्तकर की तरफ जाना, फिर वो मुस्तकर मुस्तौदा बन जाता है, फिर आगे वो कहीं और चल पड़ता है। असल सारी बातों का खुलासा कर ले तो ये पूरी जिंदगी जो है मुस्तौदा ही है, ये टेम्परेरी ही है ना। चाहे आप अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखे ना, लिखा होता है परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो इंसान बड़े शौक से उसमें अपने घर का पता लिखता है जो उसका अपना घर होता है। हालांकि इस जिंदगी में चाहे हम किसी जगह पे मुस्तकिल भी रह रहे हो ना, साल हा साल से भी रह रहे हैं, तब भी वो हमारा मुस्तकर नहीं है, क्योंकि मुसलसल हम चेंज हो रहे हैं, मुसलसल हमारे अंदर चेंज आ रही है, हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, एक दर्जे से दूसरे की तरफ हमेशा चलते ही जा रहे हैं, मुसाफिर ही है ना। जाहिरी तौर पे चाहे आपको लगता भी है ये मेरी परमानेंट रेजिडेंस है, परमानेंट मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप सफर में ही हैं, इसलिए कि आप जिंदगी के भी तो मंजिलें तय करते जा रहे हैं ना, जवानी से बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे से रजील बुढ़ापा आ रहा है। तो इंसान का कोई भी यहां पे मुस्तकर ऐसा सच नहीं है, असल में तो यहाँ पे मुस्तौदा ही है, असल मुस्तकर उसका आखरत होगा। तो वो भी अल्लाह ने मुकरर किया है, इसका मतलब है कि हमने कहाँ रहना है, कहाँ हमने टेम्परेरी रहना है थोड़े दिन के लिए मस्तन। अब इसको छोटी छोटी मिसालों के अंदर देख ले आप, किसी होटल में आप जाके रहते हैं, अल्लाह को वो भी पता है, उसने वो भी मुकरर किया हुआ कि यहाँ पे ये यह रहेगा, फिर किस जगह पे हमारा परमानेंट एड्रेस बनना है, यहाँ पे किस मुल्क में हमने जाना है, किस शहर में हमने रहना, वो भी अल्लाह ने मुकरर किया। वो हम उर्दू में अपनी बोलते हैं ना, दाना पानी लिखा हुआ था, कहते हैं ना दाना पानी लिखा हुआ था, वो क्या है दाना पानी लिखा हुआ था, यानी कि अल्लाह ताला ने मुकरर किया हुआ है आपने वहां पहुंचना होता है। फिर किधर कब्र इंसान की बननी है, अगर उसको मुस्तकर ले लिया जाए तो वो कब्र भी उसके लिए, हालांकि वो भी एक मुस्तौदा ही बन जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद कब्र से भी उठना, तो असल मुस्तकर तो या तो किसी के लिए जन्नत है या जहन्नम, असल तो यही है ना, क्योंकि आखरत के भी मकामात में एक से आगे एक, एक से आगे भी एक, पहले हशर है फिर पुरसिरात है फिर आगे, तो जो जहां उसकी फाइनल जाके उसको बैठना है, वो अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के आला मकाम करते सबके लिए, ये वो है बस। तो ये बाकी जितने मराहिल हैं, जितने दर्जे हैं, वो जितने भी मुस्तकर नजर आए, लेकिन वो मुस्तौदा ही है, चांद रोज के कयाम की जगह ही है, चाहे वो रहमे मादर है, चाहे वो जमीन में आने के बाद कभी आप किसी, देखो आज तक आप कितने आपके एड्रेस चेंज हुए होंगे, कितनी जगहों पे आप गए, कहीं सैर करने के लिए थोड़े दिन ठहरे, फिर आप अपने घर आ जाते हैं, सोचते हैं कि वो मुस्तौदा था, ये मुस्तकर है, ये भी मुस्तकर नहीं है, ये भी मुस्तौदा है। तो ये सब अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, ये अल्लाह ताला ने लिखे हैं हमारे लिए। फिर जिस जमीन के ऊपर हमने जाके मरना है, जहां पे हमें मौत आनी है, वो भी अल्लाह ताला ने लिखी है, तो उसने मुकर्रर कर दी मुस्तकर और मुस्तौदा। देखो इसमें भी इंसान का अपना बस नहीं है, अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। कद फसल आयाती ले कौमी यफकहून, तहकी खोल खोल के बयान कर दी अल्लाह ने आयतें उस कौम के लिए जो यफकहून, जो समझती हो, जो गौर फिक्र करती है। अच्छा पहले आया ली कौमी यालमून, अब आया ली कौमी यफकहून, क्यों? लेकिन पहले आफाक की निशानियां दिखाई गई, सितारे चांद सूरज दिन रात, देखिए ये कोई भी, मैंने आपको कहा ना कोई भी इंसान इस चीजों को समझ सकता है, लेकिन जब इंसान की नफ्स की निशानियों की बात आई ना, अनफुस की, तो फिर इसमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है कि कैसे एक इंसान से इतने फैले, कैसे इंसान का मुस्तकर होता है और मुस्तौदा होता है, इसके लिए फिर गौर और फिक्र करना पड़ता है। जो गौर करेगा वो ये बातें समझ जाएगा कि देखो अल्लाह ताला ने ये मेरी लिए कैसे मुकर्रर की कि मैंने कहाँ रहना है, कहाँ खाना पीना है, किधर किस होटल में रहना है, फिर आगे किस कौन सी मेरी रेंटल प्लेस होगी, फिर कौन सा मेरा परमानेंट एड्रेस होगा, फिर मैंने उससे आगे किधर मूव होना है, फिर उससे आगे किधर मूव होना है, तो ये मेरे बस में नहीं, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, ये बड़ी आराम से समझ आने वाली बात नहीं होती, ये इंसान जब शायद जिंदगी गुजार लेता तो तब उसको समझ आती। आप कभी आपने सोचा कुछ होता है और वो आप पहुंच कहीं और जाते, ठीक है? किसी ने सोचा मेरा वीजा लगेगा, मैं वहां चला जाऊंगा, ये करूंगा, वो वीजा नहीं लगा, कहीं और से और पहुंच गए, वहां से कहीं और पहुंच गए, और उसने कहा मैंने प्रोग्राम क्या बनाया था और हुआ क्या। कभी इंसान सोचता है मैंने यहाँ पे परमानेंट रहना है, बस इसको ये संभाल लू, ये संभाल लू, फिर कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, वो वहां से चला जाता। तो ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करता है जगह भी के इंसान ने किधर किधर कदम रखने, किधर किधर रहना। वो ही अल्लाह है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी को। अब ये देखिए, ये सारी अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार कर रहे हैं कि तुम कितने बेबस हो ना, तुम कितने इन कंट्रोल हो अल्लाह के। ये जो इंसान ना अपनी बागें तोड़ा तोड़ा के भागता है ना कि मैं आजाद और मैं जो मर्जी करूं और मेरी मर्जी और मैं नहीं मानता, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? अपनी हैसियत को इन चीजों में देखो, इन आयतों के अंदर देखो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा तो इतना ही बस नहीं है, तुम अपनी दिन और रात को ही कंट्रोल कर लो। तुम्हारा इतना ही बस नहीं है कि तुम सितारों को उनकी चालों को कंट्रोल कर लो। तुम्हारा अपने पर बस नहीं है कि तुम अपना मुस्तकर और मुस्तौदा ही कुछ डिटरमिन कर लो। कुछ भी नहीं, तुम्हारे बस में है क्या? फिर मानते क्यों नहीं है एक जात को जो कोई ऊपर है? पहले तो ये तो मानो, एथीस्ट होना ना बड़ा मुश्किल है। उनके पास कोई दलील नहीं है, सारी दलीलें कायनात के अंदर इस बात को पॉइंट कर रही हैं कि हमारा बनाने वाला कोई एक है। ये नहीं है सिर्फ कि कोई है, एक से ज्यादा भी हो सकते थे, नहीं, सब दलाइल इस कायनात में ये बता रहे हैं कोई एक ही है, कोई एक ही है जिसकी ये कारीगरी है। तो कैसे कोई एथिस्ट हो सकता है कि मैं मानता ही नहीं कोई है, खुद ही सारा कुछ चल रहा, सबसे बोगस उसका अकीदा है। वह अल्लदी अंजला मिन समाई मान, वो अल्लाह वो जात है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी। अब बेचारे देखो कितने अफ्रीका के अंदर जहां पे बारिशें नहीं होती, सूखे कैसे उस जमीन भी क्रैक हो चुकी। कभी उनकी तस्वीरें देखे, अस्तग़फिरुल्लाह की, जो है ना जमीन इतनी खुश्क है कि उसके ऊपर क्रैक्स पड़ चुके। वो कहते हैं ऐसा एक वक्त आएगा कि इस तरह दुनिया के अंदर जब तबाही होनी होगी तो ऐसे ही खुश्कसाली हो जाएगी, बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि बारिश भी अल्लाह की रहमत है। तो बताते हैं ऐसा टाइम आएगा कि कुछ जगह तो डूब जाएंगी और कुछ कुछ जगह इतनी खुश्क हो जाएंगी कि वहां पे पानी नहीं मिलेगा और बारिशें होंगी। अखरजना भी नबात कुल्ली शहीन, फिर हमने निकाली उससे पैदावार हर चीज की, और जब बारिश होती है तो तभी पैदावार भी निकलती है। इसीलिए किसान बीज तो डाल देता है, उसके बाद दुआएं करता है कि अल्लाह बारिशें हो जाए, और बारिशें भी टाइमली हो, बाज बारिशें टाइम के अलावा हो जाए तो वो भी फसल के लिए खराब है। तो अखरजना मिनहु खादिरन, तो अल्लाह ताला नबात कहते हैं, नबात जो है ना वो शुरू की जो स्प्राउट्स होती हैं उसको नबात कहते हैं। तो फिर उससे क्या निकालता है? सब्जा, फिर उससे फिर हरा भरा सारा खेत या सारा बाग हो जाता है। नुखरिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबन, उससे फिर वो दाने निकालता है हर एक पर एक चढ़े हुए, क्योंकि हमने तो बस रोटी खानी, चावल खाने, मकई खानी, तो हमें क्या पता कि कहाँ पे क्या ये उग रहा है और उगता फिरेगा। हम तो जाते हैं बाजार से आटे का थैला ले आते हैं और पका लेते हैं, हमें कहाँ पड़ी हुई है कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ये बारिशें बंद हो जाए और या ये जमीन उगाना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर इंसान को कदर आएगी और समझ आएगी कि ये पीछे इसके प्रोसेस क्या है। अभी तो प्रोसेस इतना ही समझ आता है ना, हम गए ग्रोसरी स्टोर से उठा के ले आए, मैंने पैसे दिए थे तो मुझे मिल गया। आप पैसे ले लेके पूरी दुनिया में घूमते रहे, अगर अल्लाह जमीन से ही ना कुछ उगाए, दाने को ही ना फाड़े, तो आप अपनी तिजोरियों के तिजोरियां भी देने को तैयार हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने खजाने लुटाने को तैयार हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको कितने डॉलर के अंदर एक बैग मिल जाता है आटे, आप हजारों डॉलर भी लाखों डॉलर भी लेके जाएंगे तो कोई एक बैग भी नहीं होगा, क्योंकि जमीन ही नहीं उगा रहे। तो ये दुकान वाला नहीं आपको दे रहा, आपको वो जो हाथ नजर आ रहा है ना, वो उसको बनाने वाला नहीं है कि आप गए तो ग्रोसरी स्टोर है जो मुझे देता है। वो खुला होगा तो वहां से ले लूंगी। तो ग्रोसरी स्टोर तो खुले ही हुए हैं तो मैं जब मर्जी ले लूंगी। नहीं, उसके पीछे सोचो, वो रब जो इसको उगाने वाला है, वो जात जो इसके पीछे है, उसको समझो। वो ना उगाए तो तुम्हारे ग्रोसरी स्टोर भी खाली पड़े रह जाएंगे, तुम्हारे पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, तुम कहीं से नहीं पा सकोगे। तो ये जो तुम समझ रहे हो ना कि मेरे ही तो बस के अंदर है, मेरे पास पैसे हैं मैं ले लूंगी, मेरे पास पैसे हैं मैं आटा चावल ये सब ले आऊंगी, ग्रोसरी स्टोर भी यहीं पे है तो मिल ही जाएगा ना सब कुछ। हाँ, तो अगर बनाने वाला ही ना बनाए तो क्या करोगे फिर? समझ आई बात? तो उस जात को पहचाने, तो वो निकालता है दाने। देखो कैसे वो दाने सिटे के भी, अच्छा आपने कुछ और, चलो मकई ही देखी आपने, अगर वो मकई, मकई तो यही है, गंदम नहीं देखी, चावल नहीं देखा आपने, कुछ और नहीं देखा, तो कम से कम आपने कॉर्न तो खाया होगा। कॉर्न में देख ले कैसे सिट्टे में कैसे एक एक दाना जैसे परोया होता है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है ना, जैसे सवार है एक के ऊपर एक, ऐसे लगता है किसी ने मोतियों की लड़ियां ऐसे परो दी, कितने सीक्वेंस के साथ। इसका भी कोई बनाने वाला नहीं, कुछ सोचो। और क्या जमीन को इतनी अकल थी कि ऐसे दानों को ऐसे पिरोना है और ऐसे एक एक दाना होना है? वमिन नखली मिन तलईहा, और खजूर में से उसके शगुफों से, पिनवानुन दानिया, उसके शगुफों से कैसे गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, कितनी, जब तो आपने कभी देखा हो खजूर के दरख्तों पे खजूरों के गुच्छे कैसे लटके होते हैं, उतने ज्यादा बेशुमार। अगर लाइव कहीं नहीं देखे ना तस्वीरों में देख ले, वह जन्नात और बागात बिन आना बिन अंगूरों के, वह जैतून और जैतून भी, क्योंकि जैतून भी एक फल ही समझा जाता है और सब्जी भी इसको समझा जाता है, वह रुमान और अनार, मुश्तबिहम वगैरह मुतशाबे, इनके तो नाम लिए, ये तो जन्नत के फल हैं, इनके तो नाम लिए अल्लाह ताला ने, और इनके बेशुमार फवाइद हैं। और फिर ये ऐसे कई फल ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं और कई नहीं मिलते जुलते, कई देखिए आप वो अपनी, हो सकता है शक्लो सूरत में मिलते जुलते हैं, गर्मा सर्दा खरबूजा एक जैसे लगते हैं लेकिन उन जायके में फर्क है, कई कलर में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनका बिल्कुल खुशबू डिफरेंट, उनका जायका डिफरेंट। सुभान अल्लाह, क्या एक ही जमीन उगा रही है, एक ही पानी मिल रहा है, एक ही सूरज चमक रहा है सब जगह के ऊपर, लेकिन कितने जायकों की चीजें निकल रही, कितने रंगों की चीजें, कितनी शेप्स की चीजें। अल्लाह ना उगाए तो कैसे उगाओगे? कहते एक वक्त ऐसा आएगा, अब वो बताते हैं ना कि चीजें जो दुनिया के अंदर इतनी, ये सारे जो मसले मसाइल हो रहे हैं इंसान के अपने गुनाहों की वजह से ही, तो कहते एक वक्त आएगा कि जमीन से कुछ चीजें ही नहीं उगेंगी, बहुत कहत साली हो जाएगी, बहुत ऐसे हो जाएगा, बहुत तरह की चीजें बताते हैं तबाही की दुनिया की। तो वाकई अगर सोचा जाए कि जमीन से ये ना चीजें अल्लाह निकाले, हमें तो शायद लगता है कि डाला तो निकलेगा ही, तो हम पानी देते हैं तो निकलेगा, क्या ये मौजा नहीं है? हम मौजे कोई मांगता है, साइंस दिखाओ कि कोई खुदा है, चूंकि हम इनको हर वक्त देखते हैं ना तो हमारे लिए इतनी कॉमन सी चीज है, तो क्या हो गया, सूरज तो निकलता ही है, जो तो क्या हो गया, दिन और रात तो है, जब से पैदा हुए देख रहे हैं, जब से पैदा हुए ये इन फलों को देख रहे हैं, हमारे लिए कोई इस चीज की कोई हमें इस चीज की सेंस ही नहीं रही कि ये गौर और फिक्र करें इस बात के ऊपर कि ये कैसे है। तो कभी चार्ट बनाए तो सोचें, फिर उन फ्रूट्स को सारों को देखें तो अल्लाह तूने कितनी तरह के फ्रूट्स बनाए मेरे लिए, ना तूने कितना ये निजाम चलाया मेरे लिए, सितारों को सिर्फ डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन कौन देख रहा है बताएं, कौन सा शेर चीता बैठ के सितारे देख रहा है, कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है, किसके लिए डेकोरेशन, किसके लिए जीनत, इंसान के लिए ना, इतने बड़े बड़े सितारे खड़े कर दिए क्योंकि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी चीज ही नहीं है, बड़ा काम ही नहीं है। अब क्या इतने से इंसान के लिए इतने बड़े बड़े सितारे जो ऐसे चमकदार, करीब जाए तो क्या पत्थर है और हमारे दूर से नजर आ रहे हैं वो इस तरह चमकने वाले, क्योंकि हमारे लिए जीनत बनाया उनको, डायमंड्स की तरह चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, फ्रूट है तो एक से बढ़ के एक फ्रूट मार्केट में आया, एक से बढ़ के एक जायका है, एक ही उसके होते हैं, यानी एक एक क्या उसको कहते हैं, जिन्स के होते हैं लेकिन जायके अलग अलग। मसलन खजूर ले लें, सारी खजूरें होंगी ڈفرینٹ ڈفرینٹ ذائقوں کی، پتہ نہیں کتنی اس میں قسمیں ہیں، سبحان اللہ، تو ملتی جلتی لیکن نہیں بھی ملتی جلتی، انگور ہیں وہ کوئی سیڈ لیس ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی گرین ہے، کوئی کس طرح، کتنی طرح کے آم ہیں، آم کی کتنی طرح کی، ہمیں اپنے ملکوں سے پتہ ہے کہ کتنی طرح کی قسمیں ہیں، اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پھل ہے لیکن اس کے اندر کتنی طرح کی قسمیں بنا دی، اور سب کے مختلف مختلف ہیں، تھوڑے تھوڑے ذائقوں میں فرق ہے، سبحان اللہ، انظروا الى ثمره اذا ثمر وينعي، دیکھو یہ کہ پھلوں کی طرف جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکنے کی طرف ہو، دیکھا کرو غور کی، دیکھنے کا مطلب دیکھتے تو ہم ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں بہت سارے پڑے، یعنی غور کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ غور کرو اللہ کی نعمتوں کے اوپر، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا مزہ آئے، شکر کہاں ہے، غور و فکر کہاں ہے، کون ہے ان کا بنانے والا، ان کو شیپ دینے والا، ان کو خوشبوئیں دینے والا، ان کو رنگ دینے والا، ان کو ذائقے دینے والا، ان کو پکانے والا، اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں، جو مان جائیں اللہ کی ذات کو ان کو تو بڑا کچھ نظر آئے گا، جو مانے ہی نہ وہ تو پھر اندھا بنا ہوا ہے، وہ پھر دیکھ کے بھی نہیں مانتا، کھا پی کے بھی نہیں مانتا، اور جو مانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ بس میں نہیں ہے کسی اور کے، ظاہر ہے سب سے دیکھیں اشرف مخلوق تو انسان ہے نا، انسان کے بس میں نہیں ہے اگر تو اور کون کر سکتا، بلیاں تو نہیں کریں گی اور گھوڑے تو نہیں یہ کام کریں گے، کوئی اور نہیں کر سکتا نا، تو جب انسان مان لیتا ہے کہ میری عقل یہاں پہ بے بس ہے، تو میرے زیادہ عقل والی تو دوسری چیزیں نہیں، اب یہ کون ہے پھر جو کرنے والا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، تلاوت سنیں،
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون